मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं खिलौना उद्योग पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले एक दो दूसरी घटनाओं को, समाचार को देख लेते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर जी के मन की बात के उद्बोधन को शायद आपने सुना होगा, और जैसा कि मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं कि जब भी ऐसा अवसर आए डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए। सवाल यहाँ आपके पसंद और नापसंद का नहीं है, सवाल आपकी उपयोगिता का है। और जो कि प्रधानमंत्री हैं वो हमारे देश के, हमारे देश को कैसा बनाना चाह रहे हैं, उनकी नीतियाँ किस तरह की हो, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन, ये सारी बातें मन की बात में वो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सुनना ही चाहिए। यदि आपने सुना हो तो उन्होंने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है, जल संरक्षण की पारंपरिक विधि के रूप में, और वह शब्द था चाल खाल। चाल खाल, राइट। अब आप देखिए कि हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि चाल खाल क्या होता है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, लेकिन आप इसलिए नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपने मन की बात नहीं सुनी थी। अखबारों में इसके बारे में अलग से नहीं दिया, हालांकि मन की बात के बारे में बाकायदे अखबारों में रिपोर्टिंग है, लेकिन वो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। वो नहीं बताएंगे कि नहीं नहीं आपको इस शब्द पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन चलिए मेरा तो काम ही यही है कि मैं आपकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करूं, तो मैं आपको बता रहा हूं एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, चाल खाल। ये चाल खाल क्या है? देखिए, जो पहाड़ी क्षेत्र थे, खासकर जो हमारा उत्तराखंड है, वहां ये जल संरक्षण की पारंपरिक विधि का नाम है। जल संरक्षण की वहां और भी कई विधियां हैं, जिसमें एक विधि है चाल खाल, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने किया। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने किया तो इसीलिए संभावना बनती है कि चाल खाल के बारे में पूछ लिया जाए। यह कुछ भी और नहीं है, जैसे पहाड़ आप देखिए तो पहाड़ क्या है? पहाड़ है, पहाड़ पर अब जल कैसे आप संरक्षित करेंगे, कैसे बचाएंगे पानी? पानी तो सब बह जाता है। तो यह एक प्रकार से पहाड़ों पर, हिल टॉप्स जो होते हैं, उन पर पानी, वाटर बॉडी क्रिएट करने की एक परम विधि है आपके लिए, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स। आप एक कृत्रिम किस्म के गड्ढे बना दे, गड्ढा कहना तो ठीक नहीं होगा, जहां पानी रुक सके। बस कुल मिलाकर के चाल खाल ये है कि आप इंग्लिश में कह सकते हैं आर्टिफिशियल पॉन्ड्स ऑन हिल टॉप। ये उत्तराखंड के गांव में ये विधि प्रचलित है। लेकिन होता क्या है कि फिर जो यूपीएससी थोड़ा सा और आपसे एक्सपेक्ट करती है कि ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने तो चाल खाल शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप कुछ और के बारे में जानिए। तो दोस्तों, बहुत सी इस तरह की पारंपरिक विधियां आपके उत्तराखंड के गांव में हिल टॉप पर प्रचलित हैं, और उसी में से एक का उल्लेख मैं यहां और करना चाहूंगा, और वह है नौला। NAULA, नौला। ये नौला क्या है? ये नौला उसी तरह से पानी संरक्षित करना है, तो अब आप कैसे करेंगे? तो होता यह है कि जो जहां पानी इकट्ठा होता है, जहां नेचुरली पानी आ रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, वहां फिर जो पत्थर की जो चट्टानें हैं उनको तराश करके उसे गहरा कर दिया जाता है। आप कह लीजिए कि थोड़ा सा कुआं तो कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जरा गहरा सा गड्ढा बना दिया जाता है, और इनकी जो दीवालें होती हैं उन दीवालों पर बकायदे भगवान विष्णु की जो स्थान, या कह लीजिए स्थानीय जो देवी देवता होते हैं, उनके चित्र उकेरे जाते हैं। और बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा, नौला को आप देखेंगे जैसे कि कोई मंदिर हो, और सच बात यह है कि वहां के लोग इसे मंदिर के रूप में पूजते भी हैं, मानते भी हैं, इसीलिए वहां के दीवालों पर जो पत्थर के दीवार होते हैं वहां देवी देवताओं के चित्र उकेर दिए जाते हैं, और उसका जो दरवाजा रखा जाता है बहुत छोटा सा रखा जाता है कि एक बार में एक ही आदमी जा सके, ताकि जानवर घुस करके उस पानी को खराब न कर सके। तो ये एक और विधि है नौला। तो इस तरीके से ये जो दो शब्द हैं आपके ध्यान में होने चाहिए। आज के एक अखबार में मुझे एक बहुत अच्छी खबर पढ़ने को मिली, और वो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने यहां जो अस्पताल खोलने का जो काम है उसे उद्योग का दर्जा दिया है। उद्योग का दर्जा, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अस्पताल खोलना चाहता है तो उसको वही सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो सरकार उद्योगों को देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने पूरे स्टेट को चार भागों में बांटा है, ABCD। ए तो वे शहर होंगे जो आप यूं कह लीजिए कि अच्छे शहरी क्षेत्र हैं, ए। बी वे होंगे जो अर्ध शहरी क्षेत्र होंगे, सेमी अर्बन एरिया जिसे आप कहते हैं। इसके बाद सी जो होगा वो ग्रामीण क्षेत्र होंगे, लेकिन थोड़े से बड़े किस्म के ग्रामीण क्षेत्र होंगे, जिसे आप कस्बा जैसा कह सकते हैं, है ना, जो सड़कों के किनारे होंगे, जहां अप्रोच थोड़ी सी ठीक ठाक होगी, लेकिन है वो ग्रामीण क्षेत्र, तो बड़े ग्रामीण क्षेत्र। और जो डी है वो है दूर दराज के गांव, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र, ये चार भागों में बांटा। और सरकार ने ये घोषणा की है कि इन क्षेत्रों में जब कोई भी अस्पताल खोलेगा तो उन्हें जो छूट दी जाती है, रियायतें दी जाती हैं, वो रियायतें दी जाएंगी। और स्वाभाविक है कि शहरी क्षेत्र में खोलने पर रियायतें कम होंगी, इसके बाद जैसे जैसे आप दुर्गम या ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचते चले जाएंगे वैसे वैसे रियायतें बढ़ती चली जाएंगी ताकि लोग प्रोत्साहित हों। देखिए, भारत ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत उद्योगों के विकास के लिए भी यही किया था, जो हमारे दुर्गम क्षेत्र पड़ते थे, द नॉर्थ ईस्ट एरियाज या कह लिए रेगिस्तानी इलाके या पहाड़ी इलाके, उन क्षेत्रों में अगर आप उद्योग खोलते हैं तो बकायदे सरकार ने किया कि इसमें इनकम टैक्स की छूट होगी, बिजली मुफ्त दी जाएगी, इतना आपको अनुदान दिया जाएगा, इस तरह की व्यवस्थाएं की हुई हैं। कुछ इसी तरह की व्यवस्था अस्पतालों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य ने की है, जिसे मैं समझता हूं कि वेलकम किया जाना चाहिए, और ये तथ्य आपके दिमाग में मौजूद होना चाहिए, इसलिए कि बाई दिवे अगर एग्जामिनेशन में मेंस में ये पूछा जाता है कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, आप बताइए, तो आप उसमें एक उपाय बता सकते हैं। ये राजस्थान सरकार ने बहुत पहले एक और मॉडल शुरू किया है, जो है पीपीपी मॉडल पर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर, यानी कि सरकार कहती है कि हमारे पास अस्पताल है, हमारे पास ये बिल्डिंग है, हम आपको मशीन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है सरकार, और इसके बाद अब जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो दूसरी चीजें हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए, तो इस तरह से पीपीपी मॉडल पर वो चल रही है। बीच में ये भी बात होती है कि जो गांव में हमारे जो डॉक्टर्स जाते हैं एमबीबीएस करके, एमडी करके, वो जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि मेडिकल का एक 3 इयर्स कोर्स शुरू किया जाए, 3 इयर्स कोर्स, जो सामान्य किस्म की बीमारियां हैं, केवल उनकी जानकारी हो उन्हें, वो ग्रामीण जरूरतों को पूरा कर सकें, और अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो फिर वो रेफर कर दें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो भारतीय जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको बेहतरी करने के काम में लाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। खिलौना उद्योग के बारे में मैंने इससे पहले भी आपसे बातें की थी, और उसमें मैंने कुछ डेटा आपको दिया था, वो आपको ध्यान होगा, और अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, मैं आज आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, जो दैनिक जागरण में छपा है, डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस ही आर्टिकल पर बेस्ड एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लें, ये आर्टिकल अपने आप में सफिशिएंट होगा, और आपका जो नोट्स होगा वो देखिए कितने भागों में विभाजित होना चाहिए, बहुत क्लियर कट तस्वीर होनी चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में कुछ भी आप घुसेटते चले जा रहे हैं, पॉइंट पॉइंट दे करके लिखते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नोट्स में हो सकता है कि चीजें सिस्टमेटिक तरीके से न दी हुई हो, मतलब इस आर्टिकल में हो सकता है कि चीजें सिस्टमेटिक तरीके से न दी हुई हो, लेकिन आपका काम है कि आप अपने नोट्स को तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाएं ताकि दिमाग में आपके उसी तरह से तस्वीर इमर्ज होती चली जाए। तो सबसे पहला होगा कि जो खिलौना है वास्तव में क्या है, तो शुरुआत में ही आपको मिल जाएंगे कि खिलौना केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बच्चों के लिए मनोरंजन का तो साधन है ही, इससे जो दुनिया के देश हैं वो भारतीय समाज को समझ सकते हैं, हम अपने बच्चों का मानसिक विकास इसके माध्यम से कर सकते हैं, उनके अंदर भारतीय संस्कार डाल सकते हैं, और फिर रोजगार का साधन तो है ही, और खासकर दूर दराज के हमारी जो महिलाएं हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रोजगार का साधन हो सकता है, और फिर वोकल फॉर लोकल तो है ही, तो ये खिलौना है, ठीक है। और नो डाउट कि अगर हमारा खिलौना उद्योग विकसित होगा तो हम निर्यात करेंगे, निर्यात करने से हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी, आंकड़े बताते ही हैं कि हम अपने खिलौनों का कितना बड़ा हिस्सा, 80% हिस्सा आयात करते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा हम चीन से आयात कर रहे हैं, तो हम जो आयात कर रहे हैं, तो आज जब आयात करते हैं तो हम विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं ना, तो वो भी विदेशी मुद्रा बचेगी, और जब हम निर्यात करने लगेंगे तो हम विदेशी मुद्रा अर्न करने लगेंगे, तो विदेशी मुद्रा में बहुत इजाफा होगा। तो ये इसके पक्ष हैं कि क्यों इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, राइट। इसके बाद फिर आंकड़े वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा, फिर इसका जो दूसरा हिस्सा आएगा वो ये है कि सरकार ने इसके लिए किया क्या है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। हमने टाइकैथन के बारे में बात की, जो इतना बड़ा सम्मेलन किया गया, उसमें लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कि सरकार ने बकायदे 2020 में खिलौनों पर आयात शुल्क 200% लगा दिया। जब आप आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है कि विदेशों से आने वाले खिलौने महंगे हो जाते हैं, तो इससे जो भारतीय खिलौने हैं, हमारे जो स्वदेशी खिलौने हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। तो सरकार ने ये कदम उठाया। बकायदे फिर सरकार ने 2020 में ही आयातित खिलौनों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मापदंड तैयार किए, ताकि जो बाहर से खिलौने आ रहे हैं उनकी क्वालिटी बेहतर हो सके। बकायदे 1921-22 के बजट में मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसे शामिल किया गया है। तो इस तरीके से सरकार भी इसके बारे में सोच रही है। तो आपके दिमाग में बहुत क्लियर कट हो जाने चाहिए कि अच्छा, सरकार ये कदम उठा रही है। इसके बाद फिर लास्ट हिस्सा होगा कि और क्या क्या किए जाने चाहिए। ये तो चलिए हो गया। तो देखिए, किए जाने के बारे में बकायदे इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि एक ऐसा हो कि खिलौना डिजाइन संस्थान बने, जैसे फैशन डिजाइन संस्थान बना हुआ है, वो नए नए डिजाइन तैयार करेगी। फिर यह है कि जो खिलौना उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनको फाइनेंस मिल सके, धन मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार चाहे तो GST पर छूट भी दे सकती है, तो उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। ट्रॉय क्लस्टर भी बना सकती है, जैसे SEZ बनाए जाते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन टाइप के, तो ट्रॉय क्लस्टर बना सकती है, मतलब एक छोटा सा एरिया है जहां खिलौने बनाने वाले उद्योग ही लगे हुए हैं, तो उन्हें आसानी होती है चीजें बनाने में, करने में, एक दूसरे से इंटरेक्शन होने में, तो टॉय क्लस्टर बना सकती है। हमारे जो परंपरागत खिलौना बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, उनका कौशल विकास किया जा सकता है। तो ये 4-5 पॉइंट हो गए। और अगर आप इतना कर लेते हैं, बात बन गई, आपका एक टॉपिक तैयार हो गया और इतना सरल सा है, एक दो बार आप पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में मौजूद रहेंगी बातें, और अगर मेन एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। एक बहुत बड़ी बात यह है कि सरकार ने बकायदे जो हमारे 24 प्राथमिकता वाले जो सेक्टर हैं उसमें से खिलौना को शामिल कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सरकार इसके लिए कर रही है। तो दोस्तों, खासकर खिलौना उद्योगों से संबंधित इस आर्टिकल के माध्यम से मेरा उद्देश्य यह भी बताना था कि आप किस तरह से किसी आर्टिकल को आधार बना करके अपने नोट्स तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सिमरन जीत सिंह लुधियाना पंजाब से, रवीना राय हाजीपुर बिहार से, सोनिया देशवाल, अनीशा वर्मा और जयलक्ष्मी जपति। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।